गुड मॉर्निंग। यह प्रोग्राम विपश्यना ध्यान केंद्र की ओर से हर शुक्रवार सुबह 8:10 से 8:35 तक प्रसारित किया जाता है। यह प्रोग्राम आप ऑनलाइन www.planetaudio.org.nz पर भी सुन सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं। अब आप आचार्य श्री गोयनका जी के साथ कुछ वार्तालाप सुनेंगे।
नमस्कार श्रोतागण, पिछले कई एपिसोड से गुरुजी हमें बता रहे हैं कि भगवान बुद्ध ने कुल 38 मंगल गुणों का उपदेश दिया है, जो आज के दौर में भी उतना ही महत्व रखता है। आइए इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं हमारे आचार्य श्री गोयनका जी के साथ। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम माता जी। गुरुजी, हम गृहस्थों के लिए 33वां उत्तम मंगल कौन सा है?
बेटी, ये जो शुरू किया, कुसंगत से बचना, सत्संग में लगना, ये एक एक कदम गृहस्थ को कहां ले जाता है? बहुत ऊंची अवस्थाओं पर ले जाता है। तो एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं, तो आगे जाकर के ये चार आर्य सत्य हैं, इनका दर्शन करना उत्तम मंगल है। कठिनाई सबसे बड़ी ये हो गई कि भगवान बुद्ध की जो शिक्षा इस विपश्यना विद्या में थी, वो दुर्भाग्य से नष्ट हो गई, विलुप्त हो गई भारत में। उनकी जो वाणी जिस भाषा में थी, वो भाषा लुप्त हो गई, उनकी वाणी लुप्त हो गई। तो जो बातें बहुत प्रचलित थे भारत में गृहस्थों के लिए कि हम कैसे आगे बढ़ते बढ़ते मुक्त अवस्था तक पहुंचे, वो अर्थ ही उनका खो बैठे। ये जो चार आर्य सत्य सो कहते हैं, दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है और उस निवारण का उपाय है। आप नहीं समझे लोग तो अरे दुख ही दुख की बात करता है, ये बुद्ध की शिक्षा किस काम की? बहुत दुखवादी हैं। अरे दुखवादी नहीं, ये तो सुखवादी हैं, दुख के बाहर निकालते हैं। कोई आदमी रोगी हो, किसी वैद्य के पास जाए, डॉक्टर के पास जाए, हकीम के पास जाए, वो देखे कि तुझे रोग है, तो ये रोग है तेरा और ये तेरे रोग का कारण है, और भाई ये चिकित्सा है, ये इलाज है तेरा, ये दवा है, ये औषधि है, इसके सेवन से तू रोग से मुक्त हो जाएगा, तो हम डॉक्टर को रोगवादी कहेंगे कि चिकित्सावादी कहेंगे? तो भ्रांतियां फैली, बहुत भ्रांति फैली। तो समझें कि जो आदमी हमें बहुत बड़े रोगों से मुक्त करता है, वो हमारे मंगल का रास्ता खोलता है। दुख है, इस सच्चाई से कैसे मुंह मोड़ा जाए? जीवन जगत की सच्चाई है, गृहस्थ के लिए भी दुख है, जो गृह त्यागी है उसके लिए भी जीवन में दुख आते हैं, अनचाही बातें होती हैं, मनचाही नहीं होती हैं, और आदमी व्याकुल होता है। क्यों व्याकुल होता है? केवल इसीलिए नहीं कि अनचाही हो गई, मनचाही नहीं हो गई, ये तो ऊपर से ये कारण है। गहराई से जाने से मालूम होगा कि हम विकार जगाते हैं। मन चाहे होते ही इतने खुशियों से प्रफुल्लित हो उठते हैं और उसके प्रति इतनी आसक्ति जगाते हैं कि राग पर राग, आसक्ति पर यह रहना चाहिए। जो मन चाहे हुई वो कायम रहनी चाहिए और उससे भी ज्यादा अच्छी मन चाहे होनी चाहिए। यह मन चाहे कहीं चली न जाए, गहरी आसक्ति है और वो चली जाती है, हमारे वश की बात नहीं है। ये नित्य नहीं है, शाश्वत नहीं है, ध्रुव नहीं है, हमेशा एक जैसी रहने वाली नहीं है, नष्ट हो जाती है। तो मन चाहे में भी दुख है और अनचाही आई तो दुख है ही। ये अनचाही मनचाही जीवन में आती रहती है और हम इससे दुखी ना हो, इसका अगर कोई उपाय बताता है कि दोनों ही अवस्था में हम कैसे समता में रहें, तो दुख से मुक्त हो गए। तो ये जो चारों आर्य सत्य की बात की, उसको न समझने से लोगों ने दुखवाद कहना शुरू किया। दुनिया में इस व्यक्ति से बड़ा कोई सुखवादी नहीं हुआ जो दुखों के बाहर निकालने का रास्ता बताता है, इस जीवन के दुखों के बाहर निकलने का रास्ता और जन्म मरण के भव चक्र के बाहर निकलने का रास्ता बताता है, उससे बड़ा सुखवादी कौन होगा? दुखों के बाहर निकालने वाला है। आर्य क्यों कहते हो इसे? एक प्रश्न आता है, बार 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 इस तरह के प्रश्न आते हैं। अब तो आर्य कहने लगे कोई गोरा चिट्टा जाति का आदमी हो, ऐसा मनुष्य हो, गोरा चिट्टा है, नाक लंबी है, आंख बड़ी बड़ी है, या आर्य जाति का है, कोई लेन देन नहीं इस बात से, काला है कि गोरा है कि भूरा है कि पीला है, किसी रंग का हो। लेकिन वो अपने आप को सुधारते 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 विकारों से मुक्त हो गया, ऐसे विकारों से मुक्त हो गया कि वैसे विकार अब बनाएगा नहीं, तो आर्य हो गया। और जो अभी तक विकारों से मुक्त नहीं हुआ, विकारों में उलझा हुआ है, वो अनार्य है, चाहे उसका रूप रंग चाहे जैसा हो, वो अनार्य है। तो पाली भाषा में उसे को अनर्यो कहते थे, आर्य को अर्यो कहते थे, अनार्य को अनर्यो कहते थे, अनर्यो 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 आगे जाके अनाड़ी हो गया। शब्दों का अपभ्रंश होता है, अनाड़ी हो गया। क्या अनाड़ी होता है? कि जिसको ये होश नहीं है कि मैं स्वयं अपने आप को दुखी बनाए जा रहा हूं, मैं ये नहीं जानता कि मैं दुखी क्यों हो रहा हूं, ये नहीं जानता कि मैं स्वयं अपने दुख का कारण हूं, और ये नहीं जानता कि मैं उस दुख का निवारण कर सकता हूं और कर नहीं रहा हूं, तो अनाड़ी है ना। और क्या अनाड़ी हुआ? अनार्य है। तो कैसे अनार्य से हम आर्य बने? सारी विद्या इसी बात के लिए है। इसको नहीं समझते इसलिए गृहस्थ का जो उत्तम मंगल है वहां तक पहुंचाता है, वहां तक पहुंचने की विद्या नष्ट हो गई। तो ठीक, अब उसे समझ करके हर गृहस्थ को इस रास्ते चलना चाहिए जिससे वो अनार्य से आर्य बन जाए, दुख से दुख मुक्त वाला व्यक्ति बन जाए, दुख का नामो निशान न हो, भव चक्र के बंधन से बाहर निकल आए। इस जीवन के दुखों से तो बाहर निकले, भव चक्र के दुखों से बाहर निकल जाए तो आर्य हो गया। और ये चारों जब आ जाएंगे तब गृहस्थ जीवन की सफलता आ गई। गृहस्थ जीवन में ये काम कर सकता है, सन्यासी हो तो जल्दी कर सकता है, भिक्षु हो जल्दी कर सकता है, उसके सिर पर बहुत जिम्मेदारियां नहीं। लेकिन रास्ता एक ही है दोनों के लिए, गृही हो चाहे गृह त्यागी हो, उसी रास्ते चलते चलते मुक्त अवस्था तक पहुंचेगा। ये आर्य सत्य, चारों आर्य सत्य, इनका दर्शन होना बहुत आवश्यक है, इससे मुक्ति प्राप्त होती है और गृहस्थ के लिए बहुत उत्तम मंगल है, बहुत उत्तम मंगल।
जी गुरु जी, गुरु जी आपने हमें आर्य सत्यों के बारे में बताया, आपने कहा कि उनका दर्शन करना होता है, तो ये दर्शन करना माने क्या करना?
बेटी ये दर्शन शब्द ने भी बड़ी भ्रांतियां पैदा कर दी। समय बीतते बीतते सदियां गुजरते गुजरते एक शब्द का अर्थ बदल जाता है। आज तो दर्शन शब्द का एक अर्थ ये होने लगा कि खुली आंखों कोई रूप देखा, कोई रंग देखा, कोई रोशनी देखी, कोई आकृति देखी तो दर्शन हुआ। हम जिस दर्शन की बात कर रहे हैं उससे इसका कोई लेन देन नहीं, दूर परे का भी संबंध नहीं। एक ये चल पड़ा कि ध्यान करते करते हमें किसी उपास्य देव का देवी का दर्शन हो गया, उसकी रूप की आकृति ध्यान में सामने आ गई, या कोई प्रकाश आ गया, ज्योति का दर्शन हो गया, इससे कोई लेन देन नहीं। एक दर्शन का और भी रूप चल पड़ा कि फिलोसफी जिसे कहते हैं, यमुक संप्रदाय की फिलोसफी, यमुक संप्रदाय की फिलोसफी, यमुक दर्शन, यमुक दर्शन, ये बौद्ध दर्शन, ये जैन दर्शन, हिंदू दर्शन, ये अमुक दर्शन, अमुक, कोई लेन देन नहीं इस शब्द का इससे। जो भारत की पुरानी भाषा थी उसमें दर्शन का अर्थ होता था अनुभव करना, देखना माने अनुभव करना। तो अनुभव करना, सच्चाई का अनुभव करना, मुझे ये रोग है अनुभव करना, ये रोग है, ये रोग का कारण है अनुभव किया, ये कारण है, रोग दूर करने के लिए ये उपाय है अनुभव किया, देख ये उपाय है, और मैंने अनुभव द्वारा ये उपाय करके देख लिया, रोग दूर हो गया, मैंने अनुभव कर लिया। ये चारों अनुभव पर उतर जाए तो कल्याण की बात हुई। तो आर्य सत्य अनुभव पर उतर जाए तो कल्याण की बात हुई, उसको एक दर्शन बना के रख दिया, फिलोसफी बना के रख दी, कल्याण की बात नहीं हुई। तो ये समझना चाहिए कि अनुभूति पर सच्चाई उतरे उसको दर्शन कहते हैं।
गुरु जी इसके आगे का मंगल गुण कौन सा है?
आगे है निर्वाण का दर्शन करना। लेकिन ये निर्वाण शब्द भी बहुत भ्रामक हो गया, इसका अर्थ बहुत भ्रामक हो गया। आज तो निर्वाण मृत्यु को कहने लगे, अमुक व्यक्ति का जन्म स्थिति को हुआ और निर्वाण स्थिति को हुआ, माने मृत्यु स्थिति को हुई, इस व्यक्ति का निर्वाण हुआ, मुक्ति हुई, लेन देन नहीं। जीवन में जीते हुए निर्वाण की अनुभूति होती है, वो भूल ही गए, आपको उसका एक ही अर्थ रह गया मृत्यु का। जिस देश से माया, जहां पर भगवान की शिक्षा कायम है, वहां पर धर्म सिखाने वाला व्यक्ति कहता है कि तुझे जल्दी निर्वाण मिले, तो साधना करते करते वो अवस्था है कि जहां निर्वाण का साक्षात्कार हो, अनुभूति हो, शरीर और चित्त के परे के नित्य शाश्वत ध्रुव अवस्था का साक्षात्कार हो, वो बात तो भूल गए। तो मैं स्वयं बड़े संकोच में पड़ गया, बर्मा से आए कोई एक दो वर्ष हुए होंगे और एक शिविर चल रहा था कलकत्ते में, और उसमें कुछ लोग आए, उसमें एक नवयुवक आया, उसके माँ बाप उसे छोड़ गए, बहुत डिप्रेशन में है और बहुत व्याकुल रहता है, कौन जाने इस विद्या से ठीक हो जाए। लड़का बहुत समझदार था, पढ़ा लिखा था। दो दिन तीन दिन बीतते बीतते उसे बात समझ में आई, अरे तो बहुत साइंटिफिक है, इसमें कंध विश्वास नहीं है, अपनी अनुभूति करो और जो अनुभव पाया उसको स्वीकार करो। यूं करते करते जैसे बताया काम करने लगा और एकदम उस अवस्था पर पहुंच गया जहां भंग अवस्था कहते हैं, माने शरीर में ठोस पने का नामो निशान नहीं रह गया, सारे शरीर में परमाणु ही परमाणु, चेतना ही चेतना, चेतना का एक प्रवाह सारे शरीर में चल रहा है। तो डिप्रेशन वगैरह सारा खत्म, बड़ा प्रसन्न हुआ। 10 दिन पूरे हुए, बहुत प्रसन्न हुआ। उसके माँ बाप लेने के लिए आए, वो भी उसका हालत देख के बड़े प्रसन्न हुए। तो हमें कहते हैं गुरु जी अब बहुत अच्छा हुआ इसका, लेकिन आप एक आशीर्वाद दीजिए इसे कि उसको फिर वो रोग फिर ना आ जाए डिप्रेशन वाला, ये जो अवस्था है इसके कायम रहे। तो अच्छी बात, हमने आशीर्वाद दिया कि तू ये प्रश्न में आगे बढ़ता चला जाए और तुझे शीघ्र निर्वाण लाभ हो, निर्वाण का लाभ हो। तो माता और पिता दोनों का चेहरा उतर गया, गुरुजी क्या कह दिया आपने, हम तो बच्चे के आशीर्वाद मांगने आए और आपने इसको श्राप दे दिया, निर्वाण हो माने मृत्यु हो। मृत्यु नहीं भाई, जीते जी अनुभव होगा, साक्षात्कार होगा उस अवस्था का जो नित्य है, शाश्वत है, ध्रुव है। भारत से विद्या लुप्त हो गई। इसी जीवन में अनुभव होता है निर्वाण का, कि जहां पर कुछ भी अनित्य नहीं है, नश्वर नहीं है, भंगुर नहीं है, वो नित्य है, शाश्वत है, ध्रुव है, इंद्रियातीत है, शरीर और चित्त के परे की अवस्था है। इसी 3.5 हाथ के काया के भीतर अनुभव होता है, साधना से अनुभव होता है। बड़े खुश हो, हम तो जानते नहीं थे। तो शब्द का अर्थ ही इस देश से नष्ट हो गया। तो निर्वाण वस्तुतः अनुभूति का है, अपने भीतर साधना करते करते नित्य शाश्वत ध्रुव अवस्था का साक्षात्कार करना है, वो निर्वाण होता है।
शुक्रिया गुरुजी। गुरुजी, इस कठिन अवस्था की और भी कुछ मान्यता है। गुरुजी, आपने हमें निर्वाण शब्द का सही अर्थ समझाया। कहा जाता है कि इसकी अनुभूति करने पर व्यक्ति को एक ऐसा स्थान प्राप्त होता है जहां जन्म मरण नहीं होता, बस सुख ही सुख होता है। क्या ये सच है?
हाँ बेटी, लेकिन फिर लंबा रास्ता है, कदम कदम आगे चलना पड़ता है। वाण कहते हैं जलने को, निर्वाण कहते हैं जा जलना बंद हो गया, बुझ गया। राग की अग्नि में जल रहे हैं, द्वेष की अग्नि में जल रहे हैं, मोह मूर्ता की अग्नि में जल रहे हैं, अज्ञान की अग्नि में जल रहे हैं, अविद्या की अग्नि में जल रहे हैं। वो अग्नि जितनी जितनी बुझी उतना उतना निर्वाण हुआ, और करते करते सारी बुझ गई। तो निर्वाण ऐसा हुआ कि अब पुनर्जन्म ही नहीं होगा। तो वो अवस्था मृत्यु के बाद प्राप्त होती है, लेकिन जीते जी निर्वाणिक अवस्था जो प्राप्त होती है, उसमें ऐसी अवस्था होती है निर्वाण की जहां पर राग नहीं, जहां द्वेष नहीं, जहां पर कोई उत्पन्न नहीं होता, जहां कोई नष्ट नहीं होता, नित्य है, शाश्वत है, ध्रुव है, उसका साक्षात्कार होता है। ये अनुभूति की बात है, शब्दों में कोई आदमी न समझा सकता है और न कोई समझ सकता है, क्योंकि जिस वक्त वो निर्वाणिक अनुभूति होती है, साधना करते करते सारी इंद्रियां काम करने बंद कर देती है, आंख कान नाक जीभ त्वचा मन सब बंद, तब वो इंद्रियातीत अनुभूति होती है, इंद्रियां काम नहीं करते। थोड़े क्षणों के लिए हो, थोड़ी ज्यादा देर के लिए हो, फिर उस अवस्था में वापस आता है ध्यान करते करते। तो उसे क्या व्याख्या करेगा, किन शब्दों में करेगा, कोई शब्द उसके व्याख्या नहीं कर सकते। तो वो अनुभव करने की बात है, शब्दों में समझने और समझाने की बात नहीं है। इतना ही समझना चाहिए कि वो अवस्था ऐसी है कि जहां पर हमारा राग बुझ गया, द्वेष बुझ गया, जितना जितना बुझ गया, आगे जाकर सारा बुझ गया। तो सारा बुझ गया तो राग और द्वेष के कर्म संस्कार हैं, उन्हीं की वजह से जन्म होता है, नहीं तो जन्म काहे का होगा। ये खत्म हो गए, हमारे विकार खत्म हो गए, कर्म संस्कार सारे खत्म हो गए तो जन्म नहीं होगा। तो इस अर्थ में भी निर्वाण का एक अर्थ समझ में आना चाहिए। वाण कहते हैं ऐसे तीर चलाए, धनुष बाण होता ना, तो बाण छोड़ा, यहां से छोड़ा, वहां जाके लग गया तो जोड़ता है, यहां को वहां से जोड़ता है, इस जन्म को उस जन्म से जोड़ता है। अब वाणी नहीं रह गया तो क्या जोड़ेगा, तो अगला जन्म होगा ही नहीं, तो वाण खत्म, निर्वाण हो गया। किसी तरह समझें, ये जन्म मरण के दुखों से बाहर निकलने की विद्या है और हर गृहस्थ, हर मनुष्य ये कर सकता है। गृहस्थों को थोड़ा समय लगता है, जो आदमी गृह त्यागी है अगर वो ठीक से काम करे तो जल्दी इस अवस्था तक पहुंच सकता है। लेकिन अवस्था यही है कि हम कैसे सारे दुखों के बाहर निकल जाए, सारे विकारों के बाहर निकल जाए, तो जन्म मरण के चक्कर के बाहर निकल जाए, वो निर्वाण है।
शुक्रिया गुरुजी। गुरुजी आपने हमें इस बात को विस्तार से समझाया। गुरुजी अब समय है श्रोतागण के प्रश्नों का। पहला प्रश्न है कि टीवी पर आजकल ऐसी सीरियल्स आ रही है जिनमें पारिवारिक झगड़ों को अत्यंत बुरे रूप से पेश किया जाता है। मन में प्रश्न उठता है कि क्या सीरियल बनाने वाले को क्या समाज के प्रति कोई दायित्व नहीं बनता? ऐसे में हम क्या कर सकते हैं?
अवश्य उनका बड़ा दायित्व है। अब वो सीरियल किस तरह के बनाते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन अगर परिवार में कोई दूषित स्थिति आ गई है तो सीरियल बनाने वालों को अवश्य दिखानी चाहिए ताकि लोग समझें कि देखो ऐसा दूषण आ गया अपने यहाँ। लेकिन साथ साथ ये भी दिखाना चाहिए कि वो दूषण से बाहर कैसे निकले, उस दूषण को दूर कैसे करे। तो दूषण दिखाने में दोष नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ दूषण निकलने का रास्ता जरूर बताया जाए।
जी गुरुजी, अगला प्रश्न है, मैं एक विपस्सी साधक हूँ, मेरे भाइयों ने मेरी पत्नी को जो कटु शब्द कहे थे वो उसे भुला नहीं पा रही है। मैंने बहुत समझाया पर वो उस कारण से दुखी रहती है। गुरुजी आप मुझे बताइए कि मैं क्या करूं?
एक बात तो उस बेटी को ये समझना चाहिए कि इन भाइयों ने जो कटु शब्द कह करके इसे दुखी बनाया तो उनका लक्ष्य यही था ना कि हम तुझे दुखी बनाएंगे। एक बार उन्होंने कटु शब्द कहा, एक बार दुखी बनाया, अब ये पागलपन से कहती है कि मैं एक बार क्यों, हजार बार दुखी होंगी, बार बार उस बात को याद करूंगी और दुखी होंगी और दुखी होंगी। उन्होंने एक बार दुखी बनाने के लिए काम किया और तू हजारों बार दुखी हुए जा रहे, कर क्या रही है? नहीं समझेगी, हजार का हो जाए। ठीक बात तो ये है कि जैसे तुम विपश्यी हो उसको विपश्यना में ले आओ, विपश्यना से उससे छुटकारा लिया जा सकता है। बुद्धि के स्तर पर तो इतना ही समझाओ कि उसने एक बार दुखी बनाने के लिए तुम्हें ये काम किया, तुम बार बार क्यों दुखी होती हो, एक बार हो गई ना बात खत्म हो गई। नहीं समझ में आएगा, विपश्यी बना दो उसे, ठीक हो जाएगी।
शुक्रिया गुरुजी। अगला प्रश्न है कि मेरी क्लास में मेरे 5 प्रतिस्पर्धी है, मैं सबके प्रति मैत्री का भाव रख सकती हूँ पर इन 5 को नहीं, क्योंकि ऐसा करने पर वे मेरे आगे निकल जाएंगे। जब हम जुदा हो जाएंगे तब मैं उन्हें भी मंगल मैत्री दूंगी। मैं जानती हूँ ये गलत है और पिछले 2 से मैं उस बात को लेकर परेशान रहती हूँ। मैं इस समस्या से बाहर निकलना चाहती हूँ, कृपया मुझे मार्गदर्शन दीजिए।
अरे बेटी तुम मंगल मैत्री को समझे ही नहीं, तुम जितने जितने किसी को मंगल मैत्री दोगी तेरा बल बढ़ेगा, तो तुम उनसे कमजोर कैसे हो जाओगी? अब जैसे हो उससे भी ज्यादा बलवान बनोगी और वो भी बलवान बनेंगे, लेकिन तुम अब उनसे ज्यादा बलवान हो अगर अपने काम में और ज्यादा बलवान बनोगे। तुमने क्यों मान लिया कि मंगल मैत्री देने से और तू कमजोर हो जाएगी? इस गलत भ्रांति के बाहर निकलो, मंगल मैत्री दिए जाओ, उनको मंगल मैत्री दो, उनका भी कल्याण होगा, तेरा भी कल्याण होगा, घबराने की जरूरत नहीं है।
शुक्रिया गुरुजी। इस बात को मन में रखते हुए आज का ये वार्तालाप समाप्त करते हैं। प्रणाम गुरु जी, प्रणाम माता जी।
विपश्यना 10 दिवसीय आवासीय शिविरों में सिखाई जाती है। शिविरार्थी 10 दिनों में साधना की रूपरेखा समझते हैं और इस हद तक अभ्यास करते हैं कि साधना के अच्छे परिणामों का अनुभव कर सके। शिविर का कोई शुल्क नहीं लिया जाता, रहने तथा खाने का भी नहीं। शिविरों का पूरा खर्च उन साधकों के द्वारा दान में से चलता है जो शिविर में लाभान्वित होकर दान देकर आने वाले साधकों को लाभ देना चाहते हैं। विपश्यना ध्यान केंद्र न्यूजीलैंड में भी उपलब्ध है। यहाँ का एड्रेस है 153 बर्नसाइड रोड, मकाराउ, कौकापाकापा। अप्रोक्सीमेटली 1 घंटे का ड्राइव है नॉर्थ ऑकलैंड से। यहाँ की वेबसाइट का एड्रेस है www.medini.dhamma.org यानी के www.medini.dhamma.org। यहाँ का फोन नंबर है 09420-5319। आपको कोई भी जानकारी चाहिए आप जरूर से फोन कर सकते हैं। और आप जब भी हमारे सेंटर में विजिट करना चाहते हैं तो आप अपॉइंटमेंट लेके सेंटर की विजिट भी कर सकते हैं। ये प्रोग्राम सुनने के लिए धन्यवाद। ये प्रोग्राम एक हफ्ता हिंदी में तथा दूसरे हफ्ते इंग्लिश में बारी बारी से प्रसारित किया जाता है। अगले हफ्ते आप ये प्रोग्राम इंग्लिश में सुन सकेंगे।